Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Aradesh Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Antakaranasya Purushartha Yogyata तुष्टीनां विपर्ययेन नवधा शक्ति। हाँ, तुष्टि पुरुषार्थ की जो योग्यता है, तुष्टियों से वो विपरीत वो भी है। यहां पर भी उसी को लिखते हैं अंतकरण। ये जो मन की जो सामर्थ्य है, मन कर सकते हैं कि नहीं अपने व्यापार, मन भी असमर्थ है। इंद्रियों की असमर्थता, मन की असमर्थता को देखिए भाई। जन मनसा न मनुते जेनाहुर मनोमतम। भाई मन सारा व्यापार कर रहे जिनकी उपस्थिति से, उस अस्तित्व को जानना है। इसलिए मन भी तो एक जड़ है, एक यंत्र है, तो उस यंत्र को छेड़ने वाला कौन है? कोई है ना भाई। तानपुरा रखा है, ट्यूनिंग किया हुआ है, तो तानपुरा के ऊपर कोई थोड़ा हाथ लगाए या कुछ करे तो फिर वो झंकृत हो गए। बांसुरी जो है सब कुछ सही सलामत है, कोई उठा करके फूंक दे तो बजेगा। तो ये जो बज रहा है ना, ये जो बोल रहे हैं, कौन बजा रहे? फूंकने वाला कोई है कि नहीं? वो फूकने वाला अगर बंद कर दे महाराज, तो फिर राम नाम एकदम। तो वो कितना अच्छा एक कॉन्सेप्ट मन में एकाग्र करने की एक विधि दे रहे हैं कि वो सारे लिमिटेशंस को, ये बॉडी हो, माइंड हो, सबको विचार करके देखिए कि आप कितने भी इस बारे में एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, ज्ञान अर्जन कर लीजिए, अल्टीमेट ज्ञान वो नहीं है। आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आंख कान नाक हार्ट सब कुछ, पर तो ये स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं जाकर के व्यर्थ। तो वो जो जिन्होंने जाना, वो ऋषि लोग जो ध्यान योग के द्वारा आविष्कार किया, उनकी जो स्पेशलिटी है, जागतिक स्पेशलिटी से अलग है कि नहीं? वही बात है। इसलिए महाराज मन भी असमर्थ है। पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, पुरुषार्थ के लिए ये आपके पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, परंतु उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाला जो है वो अगर ना हो तो इसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए 28 जो है अशक्ति है, उसमें से कितना हो गया अंतकरण और 10 इंद्रिय, ये हो गया 11। अभी कितना बाकी और भी बाकी है ना, 9 तुष्टि, तुष्टि 9, उसका अभी वर्णन करेंगे, और 8 सिद्धि। इतने मिल करके 28 है। 28 काउंट कर लीजिए ना, पहले एकादश इंद्रिय, 9 तुष्टि, अभी बता रहे हैं तुष्टि क्या है, और 8 सिद्धि, अनिमा महिमा आदि वो सिद्धि, इसको इंक्लूड करके 28 जो है क्या है? आशक्ति। शक्ति नहीं महाराज। ये सब हमको अभी ऐसे लगता है कि ये सब थोड़ा थोड़ा ज्ञान ना, ये हम लोगों के यूनिवर्सिटी आदि में भी थोड़ा देना चाहिए ना, क्योंकि नव युवकों के प्रति बड़ा प्रश्न है ना, क्योंकि बहुत स्वाभाविक उनका प्रश्न एकदम सही नहीं है, ऐसे भी नहीं कह सकते ना, उनको ज्ञान नहीं है ना। ये तो अक्सर हमको यही, हमारे प्रश्न का यही सम्मुखीन होना पड़ता है, ये है तो दिखाओ, ये है तो करो, ये है तो सुनाओ। भाई ये एब्सोल्यूट नहीं है, परंतु साइंस के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के क्षेत्र में वो मान लेते हैं, तो यही हम जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में उनको क्यों नहीं मना पाते? अगर ये सब थोड़ा थोड़ा उनके नॉलेज में दिया जाए, हालांकि आजकल बहुत सारे पुस्तक निकल रहे हैं, ऑथर इंग्लिश होने के कारण उसको हम पढ़ते भी है, तो ये सब ज्ञान उनको भी थोड़ा आना चाहिए। इसकी सीमाओं को, अवधि को जाने और अवधि को जान करके निरवधि को अवधि के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। असीमित को अनंत को सीमित के द्वारा जाना नहीं जा सकता है। हा? वो कितना है वो तो मुझे कितना है उससे उनके उनको शांत आप कर पाए हैं उनके मन में जो प्रश्न है। पोस्ट ग्रेजुएशन का कम्प्लीट हमने भी कोर्स किया और हमने भी पढ़ाया भी, वो सब बीएचयू में देखा पोस्ट ग्रेजुएशन लेक्चरर मेरे को ट्रेन में पूछते कि तर्क संग्रह का शब्द ये पृथ्वी का लक्षण स्वामी जी थोड़ा बता दीजिए, बताइए। मेरे को इतना आश्चर्य लगा, वो तो बहुत लिमिटेशन है, थोड़ा थोड़ा पूरे ग्रंथ नहीं ना, छोटे छोटे अंश में देते हैं। अब इनकैपेबिलिटी एप्रोप्रिएट है कि नहीं ये देखिए। हाँ तो वही तो बताया, परंतु ये इंग्लिश में अगर असल में संस्कृत के जो पारिभाषिक शब्द है ना उसका एप्रोप्रिएट इंग्लिश होता नहीं है। वो दूर से आपको इंडिकेट कर सकते हुबहू वो अर्थ को, असमर्थ समझ सकते हैं, लिमिटेड ये भी समझ सकते हैं, इस प्रकार से कई शब्द के द्वारा उस अर्थ को समझ सकते हैं। अच्छा ये असमर्थ वही। अच्छा तो फिर हो गया 28 प्रकार के अशक्ति। तो इस 28 प्रकार के अशक्ति में देखिए 8 सिद्धि वो भी अशक्ति में आया, 9 तुष्टि वो भी अशक्ति में आया, और एकादश इंद्रिय ये सारा के सारा। और देखिए विचार करके ये 28 को लेकर के हम लोग बहुत जीते हैं, इंद्रिय 11 मन को लेकर के, और जो है बाकी 8 सिद्धि तो मानो साधना नहीं है तो वो गया, और बाकी 9 जो अभी बताने वाला है तुष्टि उसको देखिए। तुष्टिर नवधा प्रकृति उपादान काल भाग्याख्या चतस्रसह। तुष्टिर नवधा, तुष्टि जो है 9 प्रकार की है, क्या क्या? प्रकृति उपादान काल भाग्य और पंच विषय। तो इधर हो गया प्रकृति उपादान काल भाग्य 4 और 5 विषय, 5 और 4 9, ये 9 हो गया तुष्टि। ये तुष्टि मतलब क्या? हाँ तुष्टि। चलिए इतना नेगेटिव नेगेटिव बता करके अब थोड़ा आया कि भाई अब तुम तुष्ट तुष्ट हो सकते हो। तो कहते ये भी एक प्रकार के कैसे तुष्टि, देखिए हम लोग कैसे इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन किया। विषय विषयोर उपरमात् पंचः, विषयो परमात् मिला नहीं ये, विषयो परमात् पंचः कश्चित् प्रकृति परिज्ञानात् कितार्थो अस्मि इति मन्यते। हाँ ये प्रकृति पहला आया ना तुष्टि में, सर्वप्रथम है प्रकृति। प्रकृति मतलब क्या? प्रकृति के बारे में जो ज्ञान, नेचर के बारे में जो आपकी चेतना है, आपकी ज्ञान है, नॉलेज है, इसे प्रकृति के बारे में ज्ञान को प्राप्त करके कुछ लोग बड़ा संतुष्ट हो जाते हैं, होते कि नहीं? तो ये जब कब भूमिकंप होगा, कब बारिश होने वाला, मानसून कब आएगा, हालांकि लिखते हैं उसके उल्टा ही होता है, ब्रॉडकास्टिंग होती है उसके विपरीत ही होते, फिर भी वो बड़ा संतुष्ट, हाँ हम जो है आज राम 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 भाई बढ़िया करके थोड़ा ब्रह्म चिंतन हो जाए। अच्छा चलो अंतिम दिन ऐसे तो बढ़िया करके संतुष्टि कर ले। तो तुष्टि का जो है प्रकृति के ज्ञान किसी को होने लग जाए महाराज तो वो बड़ा संतुष्ट हो जाते, तुष्ट मान लेते हैं। तो यह भी एक प्रकार के आसक्ति है और विघ्न है। ये जो जापान में हुआ वैज्ञानिकों को पता नहीं लगा था, इतने सारे ज्ञान है और अपने को अभिमानी मानते हैं कि मैं ये जानता हूँ कब होगा, सब कुछ बता सकता हूँ प्रकृति, फिर भी प्रकृति के जो ज्ञान है आप जिसको मान रहे हैं, इसके भी एक आसक्ति है, सीमा है, उससे परे अगर वो चाहे तो आपके ज्ञान को दो मिनट में, और किया तो महाराज एकदम उस समय टेलीविजन देखा ऐसे लगे इतने मकान और जहाज और क्या क्या, कैसे जैसे कोई अनायास कोई ऐसे करके धीरे धीरे खिलौने की तरह पटक रहा है। तो कौन है अगर नेचर के बारे में प्रकृति के बारे में ज्ञाता है विज्ञानी है उन्होंने बता दिया था फिर भी हम सजग क्यों नहीं हो पाए। तो इसीलिए वो बता रहे कि प्रकृति के ज्ञान से जो तुष्टि है वो भी बड़ा आसक्ति है, वो भी बड़ा विघ्न है। इसलिए प्रकृति क्या है क्या वो अलग बात है, परंतु सावधान तो कर सकते थे, वो कहां गए, तो वो तो किया नहीं। तो इसीलिए वो उसके ज्ञान से अगर आप अपने को तुष्ट मानते हैं तो ये कहते हैं ये भी बड़ा आसक्ति है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा अरे कब वर्षा होगी कब आधी आएगी ये सब जान करके आप बड़े संतुष्ट हो जाते, उतने मात्र से आप संतुष्ट नहीं हो सकते, ये भी तुष्टि जो है आसक्ति है, क्योंकि उस अद्वितीय परब्रह्म को जाने बिना आप निर्भय नहीं हो सकते ना निश्चिंत हो सकते, यही बता रहे तुष्टि। तो प्रकृति तुष्टि, ये तुष्टि के पहला विभाग जो है प्रकृति ज्ञान निमित्त जो तुष्टि है वो भी अशक्ति है। कश्चित् प्रकृति परिज्ञानात् कृतार्थो अस्मि इति मन्यते। हाँ, प्रकृति के ज्ञान से बड़ा कृतार्थ अपने को मानता है। अन्यः पुनः पारिव्राज्यलिंगम गृहीत्वा कृतार्थो अस्मि इति मन्यते। अब हम लोगों की खिंचाई कर रहे, देखिए एक बार आप लोगों को कर दिया अब हम लोग कर रहे, कहते देखो कोई जो है अन्यः पुनः पारिव्राज्य लिंगम, भाई सन्यास के लिंग को धारण किया, भगवा वस्त्र पहन लिया, रुद्राक्ष के माला धारण कर लिया, बड़ा बढ़िया भस्म लगा लिया, कहती इतने मात्र से बड़ा संतुष्ट कि भाई मैं तो अब हो गया ब्रह्म। भाई ब्रह्म दर्शन के लिए लिंग को धारण किया, चिन्ह को अपने अपनाया, इससे ज्ञान नहीं हुआ। तो चिन्ह धारण मात्र से आप निश्चिंत हो गए संतुष्ट हो गए, ये भी एक प्रकार के आशक्ति है। तो ये कह रहे कि पहला है प्रकृति, द्वितीय है उपादान। तो उपादान के ग्रहण करने से आप जो है अगर तुष्ट होते हैं तो यह भी बड़ा विघ्न, विघ्न है कि नहीं भाई, लोगों के सामने आप भक्त का रूप स्वरूप बना सकते हैं, अंदर से अगर भाव प्रेम जागृत नहीं है तो फिर वो रूप स्वरूप आपको कहां तक ले जाएगा। महाराज हम सोचते हैं कि लोगों को ठग लेंगे, परंतु कहीं ना कहीं वो स्वयं ही खुद के साथ ही खुद को ही धोखेधाड़ी में वो डालता है। इसीलिए महाराज उपादान ग्रहण करने मात्र से जो है आप ऐसा मत सोचिए कि कृतार्थो अस्मि मन्यते, ऐसा नहीं है। इसलिए दो हो गया, प्रकृति के ज्ञान से अगर आप कृतार्थ मानते हैं वो भी तुष्टि नहीं है आशक्ति है, अगर उपादान लिंग चिन्ह ग्रहण करने से आप कृतार्थ हो जाते हैं वो भी नहीं है। कल मैं इधर से पैदल चल रहा था उधर, कल प्रेम कुटीर गया था थोड़ा, तो देखिए यहाँ कुछ खेल चल रहा है ना क्रिकेट का IPL, तो सब देखा बनियान पहन करके घूम रहे हैं, होंडा और बॉम्बे है ये, तो वो पहन करके उनको फील हो रहा है कि मैं भी एक क्रिकेट प्लेयर हूं तो चिन्ह धारण करने से क्या होगा। खेल करके अशक्ति को देखिए, ठीक उसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में अगर केवल उपादान को आप ग्रहण करते हैं तत्व तक नहीं पहुंचते तो उपादान से आप संतुष्ट तुष्ट नहीं हो सकते, ये भी एक विघ्न है। अपरः पुनः प्रकृति परिज्ञानेन किमाश्रमम
किमाश्रमात् उपादानेन वा किम बहुना कालेन अवश्यं मुक्तिर भवति इति मत्वा परितुष्यति।
कोई जो है ऐसा भी व्यक्ति है संतुष्ट हो जाता है प्रकृति के ज्ञान से, तो कुछ लोग संतुष्ट होते हैं, कुछ लोग जो है आश्रम आदि संन्यास आश्रम आदि ग्रहण करके लिंग आदि धारण करके चिन्ह को ग्रहण करके ही संतुष्ट हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि भाई देखो चिंता मत करो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। किम बहुना कालेन अवश्यम मुक्ति भवति, अरे क्यों इतना भागा दौड़ उपनिषद पढ़ना साधन भजन ध्यान करना, अरे कभी न कभी तो मुक्त होना ही है, निश्चिंत होकर बैठ जाओ। ऐसे बहुत लोग हैं, कई लोगों अरे कई महात्मा लोग भी ऐसे बोलते, क्यों इतना जल्दीबाजी, घूमते फिरते चलो संसार के मजा लेते हुए मुक्ति मिलेगी। ये देखिए बता रहे ना, किम बहुना कालेन अवश्यम मुक्तिर्भवति, अरे थोड़ा काल लगेगा, समय बितने दो ना, समय जाएगा तो अपने आप मुक्ति के लिए तुम्हारे पास मुक्ति जो है आने वाली है, तुमको मुक्ति मुक्त होने ही वाला हो तुम, इसलिए उसके लिए कोई चेष्टा कोई साधना कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता। तो ये भी बड़ा आ सकती है, कितना कमजोर हो जाते हैं ना व्यक्ति, कई बार हम लोग भी कहते हैं अरे जब तब बाद में करेंगे, व्यवहार कर लेते, व्यवहार बड़ा तगड़ा है भाई, व्यवहार नहीं। ये देखिए आप लोग की बात भी आ रही है, इसलिए महाराज काल के ग्रास में नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए चार हो गया ना, उपादान प्रकृति और काल, ये तीन, तीसरा है काल रूपी तुष्टि को बताया कि काल के लिए बैठा नहीं जाना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए कि अमुक काल में कर लूंगा, आप बैठ जाओ अभी बहुत समय है, क्यों अभी भाग कर में पड़े हो, अभी ये सब कर लो और बाद में समय आएगा रिटायर्ड हो जाओगे, घर से निवृत्त होकर के निश्चिंत होकर के सत्संग चिंतन भगवान के भजन करते रहना। तो काल रूपी अगर संतुष्ट है और ऐसा सुन करके अगर हम भी मान जाए कि हाँ अब बहुत समय है, तो महाराज ये तो एक अशक्ति है।
कश्चित् पुनर्मन्यते बिना भाग्येन न किंचिदपि प्राप्यते, न किंचिदपि प्राप्यते अपि मम भाग्यमस्ति, यदि मम भाग्यमस्ति ततो भवत्येव अत्रैव मोक्ष इति परितुष्यति।
हाँ ये भी एक बात है कि भाई कश्चित् पुनः मन्यते, कोई कोई ऐसा मानते हैं कि बिना भाग्येन न किंचिदपि प्राप्यते, भाई बिना भाग से कुछ भी मिलता, भाग्यवादी उसको बोलते हैं कि भाई भाग में लिखा हो तो मोक्ष होगा, काहे को फालतू दौड़ा दौड़ी, ये कह रहे हैं न बिना भाग्य न किंचिदपि प्राप्यते, यदि मम भाग्यमस्ति, यदि मेरे भाग में है तब ततो भवति एव, तब तो महाराज निश्चित होगा अत्रैव मोक्ष इति, और मुक्त अगर लिखा है भाग में तो मिलेगा, तो मोक्ष के लिए भाग की जरूरत नहीं है, भाग्य तो कर्म से नियंत्रित है, कर्म फल, तो कर्म फल और भाग्य दोनों अंतर है भाई, भाग जो कर्म फल जन्यता है और मोक्ष कर्म फल जन्यता नहीं है, तो इसलिए भाग्य की डेफिनेशन अलग है, इसलिए भाग्य के ऊपर छोड़ करके ऐसे भाग्यवादियों से पूछिएगा कि भाई भोजन भी भाग्य से ही मिलेगा ना, तो बैठे रहो ना खाएंगे, तब नहीं, कुछ क्षेत्र में तो अपने पुरुषार्थ अपनी चेष्टा अपनी साधना उसमें कर लेंगे, और साधना क्षेत्र में हो कुछ करना हो पसीना बहाना हो तब बड़ा भाग्य को, हाँ तो ऐसा नहीं भाई, कुछ क्षेत्र में जो खाने पीने के लिए तुम चेष्टा कर रहे हो तो अपनी साधना के लिए भी उतना ही पुरुषार्थ करो। तो भाग्य तक आज रहने दीजिए, कल फिर देखेंगे। हरिओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् पूर्णमादाय
वशिष्यते ओम शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदे दक्षिणामूर्तये नमः ओम शांति शांति।